सभा उपदेशक अध्याय पांच, अध्याय पांच पद एक। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में जाए तो सुनने के लिए तैयार रहें, सुनने के लिए अधिक तैयार। सभा उपदेशक अध्याय पांच पद दो। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। लेखक परमेश्वर के भवन में जाने की बात करता है जहां बातें करने में उतावली ना करना और ना उतावली से मन्नत मानना। ओ परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान दूंगा, और इस तरह उतावली से बहुत प्रतिज्ञा करना। वो कहता है अपना मुंह बंद रखें, ज्यादा बातें ना करें, सुन ले, परमेश्वर स्वर्ग में है, जो आप बोलते हैं वो सुनता है, इसलिए कुछ भी कहने में उतावली ना करना। सभा उपदेशक अध्याय पांच पद तीन से लेकर छह तक। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता से स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। परमेश्वर से की गई मन्नतें जो हमने तोड़ दी जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, क्योंकि हम में सुनने और चुप रहने की पर्याप्त समझ नहीं थी, इसलिए हमने उतावली से मन्नत मानी और परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा की है और फिर तोड़ दी। अच्छा है कि मन्नत ना माने। प्रतिज्ञा करके मुझे संतोष होता है। मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं उसे सब कुछ दूंगा, जो कुछ मेरा है सब परमेश्वर का है। परमेश्वर तू सब कुछ ले सकता है। ऐसा करके मैं अपने अपराध बोझ से छुटकारा पाता हूं, क्योंकि आखिर ये सब तो परमेश्वर का ही है। मैं ये तुझे देता हूं, लेकिन परमेश्वर वो ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देता, परंतु जब मरूंगा कौन इसे पूरा करेगा। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। सभा उपदेशक अध्याय पांच पद छह में आगे लिखा है, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ, ओह मेरा ऐसा मतलब नहीं था। सभा उपदेशक अध्याय पांच पद छह और सात। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे? क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आदर करे। सभा उपदेशक अध्याय पांच पद आठ। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। यदि आप ये सब होते देखो, याद रखें कि परमेश्वर इन सब से बड़ा है। सभा उपदेशक अध्याय पांच पद नौ और दस। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपयों से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त न होगा और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यदि आप चांदी से प्यार करते हो, आप कभी संतुष्ट न होंगे। यदि आप बहुतायत से प्यार करते हो, तो आपको कितना भी क्यों न मिले, संतुष्ट न होंगे। सभा उपदेशक अध्याय 5 पद 11। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। सुलेमान के पास बहुत धन था, लेकिन उसके पास खाने वाले भी बहुत थे। सभा उपदेशक अध्याय 5 पद 11 में आगे लिखा है, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखें। मेरा मतलब, मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन उन सब पशुओं की देखभाल के लिए बहुत से नौकरों की आवश्यकता है, बहुत से चरवाहे उनकी रक्षा के लिए चाहिए, मुझे उन्हें खिलाना है। ये सब मेरे पास है, परंतु क्या लाभ? आप जानते हैं कि सब ने खाया, मेरी पत्नी और सब बच्चों ने खाया, नौकरों ने खाया, इसलिए अधिक काम है, पर मुझे क्या लाभ? आप थोड़ा ही खाते हैं, आप एक बिस्तर पर सोते हैं, मेरा मतलब आप अपनी जरूरत का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद जो कुछ आपके पास है आप दूसरों को खाता हुआ देखते हैं। सभा उपदेशक अध्याय 5 पद 12। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वो मीठी नींद सोता है, लेकिन जिसके पास अधिक धन है वो तकिए पर पड़ा सोचता रहता है, कल अच्छा होगा कि मैं वहां से पैसा निकाल लूं, क्योंकि वहां लाभ कम हो रहा है, अच्छा होगा इसमें लगा दूं, सोच रहा हूं क्या इससे लाभ होगा, और वो पूरी रात परेशान रहता है कि वो कल क्या करेगा ताकि उसे और धन मिले। उसके धन की बहुतायत उसे सोने नहीं देती। वो पूरी रात तकिए पर पड़ा रहता और रेखा चित्र बनाता रहता है, इसलिए मेहनती आदमी कितनी मीठी नींद सोता है। सभा उपदेशक अध्याय 5 पद 13 से लेकर 15 तक। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिससे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो, और वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसे वो मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही, जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। जब हम मरेंगे हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे, सब यही छोड़ जाएंगे। सभा उपदेशक अध्याय 5 पद 16 से लेकर 18 तक। ये भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आया ठीक वैसा ही वो जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, वो ये कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। दूसरे शब्दों में, अभी आनंद मनाएं, क्योंकि मनुष्य का भाग यही है, यही सब कुछ है। ये कितना अलग है जो यीशु ने धन के प्रति कहा था। मती 6 अध्याय 19 और 20 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंग लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंग लगाते और ना चुराते हैं। एक रास्ता है जिसके द्वारा अपना धन हम स्वर्ग में जमा कर सकते हैं, और यीशु हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप अपने धन को स्वर्गीय धन में बदल सकते हो। सभा उपदेशक अध्याय 5 पद 19 और 20। वरन हरेक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है।